प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और BSF जवानों से बातचीत करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3.76 करोड़ टन अनाज और 3.77 करोड़ टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पन राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।